ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ।
ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਯੇ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਏ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਂ। ਯੇ ਪਾਂਚਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਯੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਰਸ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਹਮ ਸਭ ਜੀਵ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋ ਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ, ਇਨ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਓ ਸੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ। ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਹਮ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਕਤਰੇ ਹੈਂ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਬਿਛੜ ਕਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਂ। ਮਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਛੇ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਚਾਹੇ ਬੁਰੇ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਬਾਰ ਬਾਰ 84 ਕੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਮੇਂ ਆ ਕਰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹਮ ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਨਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹਮ ਇਨ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਕਿਆ ਰਾਜਾ ਕਿਆ ਪਰਜਾ, ਕਿਆ ਅਮੀਰ ਕਿਆ ਗਰੀਬ, ਕਿਆ ਔਰਤ ਕਿਆ ਆਦਮੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਹਮ ਸਭ ਜੀਵ ਯਹਾਂ ਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮੋਂ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਇਨ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇ ਜਾ ਕਰ ਜਿਸ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤੇ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤੇ ਸਹਿਣੀ ਪੜਤੀ ਹੈਂ। ਕਿਸੀ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਵੀ ਹਮ ਸੁਖ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਯਹਾਂ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਆਪ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਬਤਾਏ, ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ, ਐਸਾ ਰਾਸਤਾ ਬਤਾਏ, ਜਿਸੇ ਅਪਣਾ ਕਰ ਹਮ ਦੇਹ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇ ਕਾਟ ਸਕੇਂ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਏਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਏਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਵਹਿ ਕੌਨ ਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਨੋ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਕੀ ਸੋਭਤ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਮਝਾਨੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਖਿਆਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਤਭੀ ਤੂੰ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾਂਜਾਲ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਭਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਹਮ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਜੀਵ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਾਲ ਕੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਂ। ਹਮਾਰਾ ਕਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਹਮੇ ਇਨ ਇੰਦਰੀਓਂ ਕੇ ਭੋਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰੋਂ ਸੇ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮੋਂ ਕਾ ਨਤੀਜਾ ਅਬ ਰੋਧ ਹੋ ਕਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਇਨਕਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਕਾਲ ਕੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਆਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਕਾਲ ਕੇ ਇਸ ਜਾਲ ਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੈਸੇ ਪਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ? ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਭਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਕਿ ਜਬ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰ ਚੱਲ ਕਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੋ ਪਕੜ ਲੇਂਗੇ, ਤਬ ਹਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੇ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਮੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕਰ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ, ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ, ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਭੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹਮ ਉਸਕਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਜਿਸਕੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਸੀ ਕਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ 84 ਕੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਮੇਂ ਆਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ, ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਯਾ ਨਾਮ ਕਾ ਭੇਦ ਦੇ, ਹਮ ਸ਼ਬਦ ਯਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਂ, ਤਭੀ ਹਮ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ, ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਖੋਲ ਕਰ ਪਾਈ, ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਜਾਈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਉਪਾਉ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਕਾਇਆ ਕਾ ਛੁਟੇ ਨਾ ਕੂਜ਼ਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਯਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇ ਹਮ ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇਂ। गुरु अमरदास जी यहाँ तक लिखते हैं, बिन नामे होर पूजना होवी परम पुली लोकाई। भाई, शब्द या नाम की कमाई के अलावा परमात्मा की कोई भक्ति ही नहीं है, परमात्मा की कोई पूजा ही नहीं है। दुनिया तो यूं ही भ्रमों में फंसकर भूली फिरती है, कोई किसी और दौड़ता है, कोई किसी और दौड़ता है। इसलिए हर एक महात्मा शब्द या नाम की कमाई पर जोर देता आया है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई। सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम सच्ची इज्जत हासिल कर सकते हैं। उस सच्चे शब्द या नाम की कमाई के अलावा कोई और तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है, जिससे हम मुक्ति हासिल कर सकें, इस देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। मन में ख्याल आता है कि गुरु साहब यहाँ सच्चा शब्द या सच्चा नाम किसे कहते हैं। जब आप वाणी पढ़ते हैं तो जगह जगह सच्चे शब्द सच्चे नाम का जिक्र आता है, सच्ची वाणी का जिक्र आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई और भी ऐसा शब्द है, नाम है, वाणी है, जो सच्ची नहीं है, पवित्र नहीं है। सच्चे का मतलब है वह जो कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। महात्मा समझाते हैं कि शब्द दो किस्म का होता है, वर्णात्मक शब्द है, धुनात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द अनेक हैं, धुनात्मक शब्द एक है। वर्णात्मक शब्द वह हैं जो हमारे लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, बोलने में आते हैं। हमने प्यार में आकर ये जितने भी उस परमात्मा के नाम रखे हुए हैं, ये सब हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। राम, अल्लाह, रब, रहीम, वाहेगुरु, परमेश्वर, हरिओम, परमात्मा, राधा स्वामी, गॉड आदि जितने भी शब्दों से हम उस मालिक को याद करते हैं, ये सब वर्णात्मक शब्द हैं। एक तो हमारे कई देश हैं, दूसरे एक एक देश की कई कई जबानें हैं, और फिर एक एक जबान में हम कई कई लफ्ज़ों के द्वारा उस परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं। ये सभी शब्द हमारे साधन हैं, लेकिन महात्मा हमेशा सच्चे शब्द की, धुनात्मक शब्द की महिमा करते हैं। वह धुनात्मक शब्द या नाम ना आँखों से देखा जा सकता है, ना जबान से बयान किया जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है। हजूर महाराज जी उसे अनस्पोकन लैंग्वेज और अनरिटन लॉ कहकर समझाया करते थे। ये जितने भी हमारे लफ्ज हैं, ये मीन्स हैं, वह शब्द हमारा एंड और ऑब्जेक्ट है। हमें इन लफ्ज़ों से प्यार करके कोई कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने, बल्कि सच्चे शब्द की खोज करनी है, सच्चे नाम के साथ ख्याल जोड़ना है। हम क्या करते हैं, कोई परमात्मा को वाहेगुरु कहता है, वह सिख बन जाता है। कोई उस परमात्मा को अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारना शुरू कर देता है, वह मुसलमान कहलाने लग जाता है। कोई राम राम का जाप करता है, वह हिंदू बन जाता है। एक दूसरे की शक्ल देखना भी हमें मुश्किल हो जाता है। हम अपने मन में कभी सोचने या विचार करने की कोशिश नहीं करते कि अगर हमारा ख्याल आज सच्चे शब्द सच्चे नाम के साथ जुड़ जाता है, तो ना हमारी कोई कौम रहती है, ना हमारा कोई मजहब रहता है, ना हमारा कोई मुल्क रहता है। झगड़े केवल तब तक हैं जब तक हम असल से बिछड़े हुए हैं, इन लफ्ज़ों के चक्कर में फंसे हुए हैं। संत महात्मा हमेशा हमें वर्णात्मक शब्दों के झगड़ों में से निकालने के लिए आते हैं, हमारे ख्याल को सच्चे शब्द या सच्चे नाम के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। आप हर एक वर्णात्मक शब्द की हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, मियाद मुकर्रर कर सकते हैं। कोई 100 साल पुराना निकल आता है, कोई 500 साल पुराना निकल आता है, कोई 1000, 10000 साल पुराना निकल आता है। अनेक महात्मा आए हैं, हजारों अनेकों लफ्ज़ों के जरिए उन्होंने परमात्मा को याद किया है। अभी हजारों अनेकों महात्मा आएंगे, हजारों अनेकों लफ्ज़ों के जरिए वह परमात्मा को याद करेंगे, लेकिन वह जो सच्चा नाम है, उसका कोई समय नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। उस सच्चे नाम ने दुनिया की रचना पैदा की है, उसी के आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, नाम में ही ते सब कुछ हुआ। जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, यह परमात्मा ने नाम के जरिए पैदा किया है। गुरु अर्जन देव जी लिखते हैं, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, उस नाम के आधार पर ही हमारे खंड ब्रह्मांड कायम हैं। इसी प्रकार गुरु नानक साहब समझाते हैं, शब्दे तरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना पैदा की है। वह शब्द घट घट में यानी हमारे हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है। जब तक हम उस शब्द की खोज नहीं करते, उस शब्द के साथ हमारा ख्याल नहीं जुड़ता, तब तक हम कभी मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। वह शब्द कहाँ है? वह कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह हमारे वजूद के अंदर है। इसलिए गुरु अमरदास जी लिखते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए नाम न लहे, बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग शरीर या देह के बाहर उस सच्चे शब्द की खोज करने में लगे हैं, वह बेचारे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी वह है जो सारा दिन मेहनत करता है, टूट टूट कर मरता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन उस गरीब के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वह सच्चा शब्द कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर हमारी देह के अंदर है। गुरु अमरदास जी इशारा करते हैं, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया। हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, एक आंखों के नीचे है, एक आंखों के ऊपर है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा और मन की बैठक है, वह आंखों के पीछे है। संतों महात्माओं ने, गुरु साहिबान ने उस नुक्ते को तीसरा तिल कहा है, शिव नेत्र कहा है, घर का दरवाज़ा या मुक्ति का दरवाज़ा कहा है। हमारा ख्याल आँखों के पीछे इस नुक्ते से उतरकर नौ द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की दो मंजिलें हैं, पहली मंजिल आँखों तक है, दूसरी मंजिल इससे ऊपर है। हमें इस फैले हुए ख्याल को वापस लाकर इस नुक्ते पर एकाग्र करना है। गुरु साहब फरमाते हैं, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, कि जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है, हम मुक्ति नहीं हासिल कर सकते। मुक्ति इन नौ द्वारों के जरिए नहीं, दसवें दरवाजे के जरिए मिलेगी, दसवें मुक्ता। आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, मुक्ति नहीं है। जब तक मुक्ति का दरवाज़ा ना मिले, हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर कोई किले के अंदर दाखिल होना चाहता है, जब तक वह किले के दरवाजे की खोज नहीं करता, किले के दरवाजे पर नहीं पहुंचता, वह किले के अंदर किस तरह दाखिल हो सकता है? गुरु अमरदास जी समझाते हैं, नावदर ठाक के तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए। जब आप नौ द्वारों में से ख्याल को निकाल कर दसवें नुक्ते पर इकट्ठा करोगे, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। उस घर के दरवाजे की क्या निशानी है? आप फरमाते हैं, ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती गुरमती शब्द सुनामणिया। भाई, उस नुक्ते और स्थान पर तेरे अंदर अनहद शब्द दिन रात धुनकारें दे रहा है। ये नहीं कि चार पाँच घंटे बजकर शब्द बंद हो जाता है, या सिर्फ सिखों के अंदर बजता है, हिंदुओं के अंदर नहीं बजता। वह दिन रात हर एक के अंदर धुनकारें दे रहा है। जितना समय उस शब्द के साथ ख्याल नहीं जुड़ता, किसी का कभी मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे हिंदू से सिख बन जाओ, सिखों से ईसाई बन जाओ, ईसाइयों से मुसलमान बन जाओ, इन कौमों मजहबों मुल्कों के बदलने से हम प्रभु से मिलने के हकदार नहीं हो सकते। सिर्फ नाम की कमाई करके, ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़कर, मालिक की भक्ति करके ही परमात्मा के साथ मिलाप करने के हकदार हो सकते हैं। गुरु रामदास जी की वाणी है, कर रतन लाल बहुमानक लादे मन परम्या लै न सकाई है। हमारे घर यानी शरीर के अंदर परमात्मा ने नाम के बेशुमार खजाने रखे हुए हैं, लेकिन हमारा मन हमें शरीर के अंदर जाने ही नहीं देता। ये तो हमें बाहर भ्रमों में ही फंसाए रखता है। अगर किसी के घर में दौलत दबी हुई है, लेकिन वह बाहर सड़कों पर कंगालों की तरह कौड़ियां मांगता फिरता है, दर बदर ठोकरें खाता फिरता है, तो उसे उस दौलत का क्या फ़ायदा है? जब उसे अपने घर की समझ आ जाती है, वह अपने घर के अंदर जाकर उस दौलत की खोज करनी शुरू कर देता है। उस दौलत को हासिल करके वह बादशाह बन जाता है, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हासिल कर लेता है। इसलिए यहाँ गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल, कि भाई, अगर तू सच्चे नाम के साथ ख्याल जोड़ना चाहता है, सच्चे नाम की कमाई में अपने मन को लगाना चाहता है, तो गुरुमुखों की संगत कर, साधुओं संतों महात्माओं की सोबत कर।
तो सा बंदो जिया का इत्थे ओत्थे नाल।
आप समझाते हैं, ये जो सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई है, यही तेरा असली तोशा है, जो यहाँ भी तेरे साथ है, वहाँ भी तेरे साथ है। इस नाम की कमाई करके यहाँ भी तू 10 दिन सुख और शांति के काट सकता है, और वहाँ भी तू देह के बंधनों से आज़ाद होकर वापस जाकर परमात्मा के साथ मिल सकता है। इस नाम की कमाई के सिवाय कोई चीज़ तेरी सहायता नहीं करेगी, कोई चीज़ तेरी मदद नहीं करेगी, कोई चीज़ तेरे साथ नहीं जाएगी। ये सब बेटे बेटियाँ हम यहीं छोड़ जाएंगे, कौमों मज़हबों मुल्कों के झगड़े भी यहीं रह जाएंगे। दुनिया की सब धन दौलत लोग यहीं छोड़कर चले गए हैं, और हमें भी यहीं छोड़कर चले जाना है। इन्होंने जब उनका साथ नहीं दिया, ये हमारा क्या साथ दे सकते हैं। इनमें से हर चीज़ के साथ हमारा जो संबंध है, वह हमारे शरीर हमारी देह के कारण है। जब तक हम इस देह में बैठे हैं, ये बेटे बेटियां, यार दोस्त रिश्तेदार हमें अपने नज़र आते हैं। हमें दुनिया की धन दौलत जायदादें वगैरह भी अपनी नज़र आती हैं, लेकिन हम उस वक़्त को भूल जाते हैं जब हमें ये देह का साथ छोड़ देना है। तब हर चीज़ के साथ हमारा संबंध अपने आप ही टूट जाएगा। जिस चीज़ के कारण हम दुनिया को अपना समझे बैठे हैं, दुनिया की शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में सोच और विचार करने की हमने कोशिश नहीं की। ये तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस उस परमात्मा ने बख्शे हैं, उन्हें भुगतने के बाद हर एक को अपनी देह को यहीं छोड़कर चले जाना है। आप देख लें, जिन बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बड़े बड़े विजेताओं, बड़े बड़े डिक्टेटरों से दुनिया थर थर कांपती थी, उनकी कब्रों को आज हम किस तरह हकारत की नज़र से देखते हैं। इसी तरह लोग हमारी कब्रों को भी देखकर गुजरेंगे। उनकी धूल आज उड़कर हमारी आंखों में पड़ती है, हमारी मिट्टी किसी दिन जाकर लोगों की आंखों में पड़ेगी। पता नहीं हम इस शरीर के देह के अहंकार में, गरूर में क्यों फंसे हुए हैं। इस देह के अंदर बैठकर इसमें उस शब्द की खोज नहीं करते, उस नाम की खोज नहीं करते, इस देह से फ़ायदा उठाकर परमात्मा की भक्ति की ओर ध्यान नहीं देते। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बिन नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। भाई, नाम की कमाई के बिना ना कोई चीज़ तेरे साथ जाएगी, ना कोई चीज़ तेरी सहायता तेरी मदद करेगी। जब भी तू मुक्ति हासिल कर सकेगा, सिर्फ शब्द की कमाई करके। हजूर फरमाया करते थे कि जप तप पूजा पाठ दान पुण्य का जितना भी फल होता है, वह तो यमदूत रास्ते में ही छीन लेते हैं। एक नाम की कमाई ऐसी है जिसके नज़दीक कोई यमदूत नहीं आता। जिस दौलत को हासिल करके हमें धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ता, जिसको पाकर हम देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ये जो सच्चे शब्द की कमाई है, यही तेरा असली दाम गंठ बंधना है। यही चीज़ हम पल्ले बांध कर ले जा सकते हैं। दुनिया की बाकी सब चीज़ें तो हमें यहीं छोड़ जानी है। हम मुट्ठी बंद करके दुनिया में जन्म लेते हैं, हाथ पसार कर दुनिया से चले जाते हैं, फिर भी अपने मन को इतना दुनिया में फैलाए रखते हैं जैसे हमें सारी दुनिया ही समेट कर अपने साथ ले जानी हो। संत महात्मा हमें समझाने के लिए आते हैं कि इन रिश्तों को असली समझकर सारी उम्र इनके मोह या प्यार में ना फंसे रहो। अपने पाठ को खुशी खुशी अदा करो, और ये पाठ अदा करते हुए अपने ख्याल को उस सच्चे शब्द की तरफ रखो, सच्चे नाम की कमाई की तरफ रखो। इसलिए पांचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं कि भाई, सुरत शब्द का अभ्यास, नाम की कमाई ही तेरा असली तोशा है। इसी दौलत को तू देह के अंदर बैठकर दुनिया में रहते हुए कमाकर साथ ले जा सकता है। दुनिया की बाकी सब चीज़ें नाशवान हैं, हर चीज़ को तुझे यहीं छोड़कर चले जाना है।
गुर पूरे ते पाईए अपनी नदर निहाल।
अब कुदरती तौर पर मन में ख्याल पैदा होता है कि महात्मा इतनी ऊंची और पवित्र कहकर जिस दौलत की महिमा करते हैं, जिसको पाकर हम देह के बंधनों से भी बच सकते हैं, उस दौलत को हमें हासिल किस तरह करना है। गुरु साहब फरमाते हैं, गुर पूरे ते पाइए, कि जब पूर्ण गुरमुख मिल जाते हैं, मालिक के भगत और प्यारे मिल जाते हैं, वह हमें शब्द या नाम की कमाई करने का भेद और तरीका बता देते हैं, तभी हम दुनिया के जीव उस शब्द के साथ ख्याल जोड़ सकते हैं, नाम के साथ ख्याल जोड़ सकते हैं। विद्या की ताकत हमारे हर एक के अंदर मौजूद है, लेकिन वह ताकत हमारे अंदर सोई हुई है। जब हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, हम BA, MA, आलिम फाजल गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास PhD की, वकालत की, डॉक्टरी की डिग्री है, उन्हें पूछकर देखो, उस्ताद ने कोई चीज़ घोलकर उनके अंदर नहीं डाली। केवल उस्ताद की संगत या सोबत करने से ही उनकी बुद्धि तेज हो गई है। जो उस्तादों की संगत या सोबत नहीं करते, वह सब अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाते हैं। विद्या की ताकत उनके अंदर भी होती है, लेकिन सोई हुई आती है और सोई हुई ही चली जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं, गुर पूरे ते पाइए, कि भाई जब तू पूरे सतगुरु की संगत करेगा, तभी तू नाम रूपी दौलत को अपने अंदर हासिल कर सकेगा। ऐसे गुरमुख हमें ये नहीं कहते कि आप कौम बदल लें या मज़हब बदल लें या कोई धन दौलत उन्हें दे दें। वह तो स्वयं अपने हाथों की कमाई करके साथ संगत की मुफ्त सेवा करते हैं। वह हमें भी यही उपदेश देते हैं कि ना बेटे बेटियां छोड़ने हैं, ना कौमों मज़हबों मुल्कों को बदलने की ज़रूरत है। जहां परमात्मा ने पैदा किया है, वहां रहते हुए हमें अपने शरीर या देह के अंदर उस शब्द की खोज करनी है, उस नाम रूपी दौलत की खोज करनी है। ऐसे गुरमुख हम पर कब बख्शिश करते हैं? जब हम उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी हासिल करते हैं, जब उनके समझाने के अनुसार जीवन को ढालना शुरू कर देते हैं, उनके उपदेश पर चलना शुरू कर देते हैं, तब उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता हासिल कर लेते हैं। जिस समय उनकी नज़र निहाल हो जाती है, तभी हम उस ऊंची और पवित्र दौलत को अपने अंदर हासिल कर सकते हैं।
कर्म परापत तिस होवे जिसनो होए दयाल।
अब गुरु साहब उससे भी आगे चलते हैं और कहते हैं कि गुरुमुखों की दया मेहर उन जीवों पर होती है जिनके लिए उस परमात्मा का हुक्म हो जाता है। जब परमात्मा की दया मेहर बख्शिश होती है, तभी हमें ऐसे गुरुमुखों की संगत प्राप्त होती है। हम अपने आप जितनी मर्जी गुरुमुखों को ढूंढने की कोशिश कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते, जब तक कि उस आदिकर्ता की, उस परमात्मा की हमारे ऊपर दया मेहर बख्शिश नहीं होती। आप गुरु अर्जन देव जी के 12 माह के शुरू में पढ़ते हैं, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। ए परमात्मा, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछड़े हुए फिर रहे हैं। तू हम पर कृपा करे, तू हम पर दया मेहर बख्शिश करे, तभी हम वापस जाकर तुझसे मिल सकते हैं। आप कहते हैं, आप पर लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन। ए परमात्मा, अगर जीव के वश में हो कि तुझसे अपने आप ही मिल सके, तो किसका दिल करेगा कि तुझसे बिछड़कर इस 84 के चक्कर में आकर दुखों मुसीबतों में फंसा रहे। हम इसलिए तड़पते फिरते हैं, बिलखते फिरते हैं कि हमारे बस में ही नहीं कि हम अपने आप तेरी खोज कर सकें। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जीवन मरना सब तो देताई, जिस बख्शे तिस दे वड्याई। ए अकाल पुरुष, हमारा हर एक का जन्म मरण तेरे अपने हाथ में है। जिन जिन पर तू बख्शिश करेगा, उन्हें ही तेरे साथ मिलने की सच्ची बड़ाई मिलेगी। आप तो दावे के साथ यहाँ तक कहते हैं, खोटे खरे तुद आप उपाय, तुद आपे परखे लोग सबाए, खरे परख खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया। ए परमात्मा, दुनिया के सब जीव तेरे अपने पैदा किए हुए हैं। खोटे भी तुमने पैदा किए हैं, खरे भी तूने पैदा किए हैं, और तू खुद ही परखने बैठ गया है कि कौन से खोटे हैं, कौन से खरे हैं। जिन्हें तू खरे बनाता है, उन्हें तू अपने खजाने में दाखिल कर लेता है। जो खोटे रह जाते हैं, जिन्हें तू खरे नहीं बनाता, वह यहीं भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। इसलिए जो कुछ भी होगा तेरी दया मेहर बख्शिश के जरिए ही होगा। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, कर्म हो वे सतगुर मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। जब मालिक बख्शिश करेगा तब हम गुरुमुखों की संगत में सोबत में पहुँचेंगे। जब गुरुमुख हमारे ऊपर दया मेहर बख्शिश करेंगे तब हमारी सुरत उस शब्द को पकड़ेगी, तब हमारा दुनिया से मोह या प्यार निकलेगा, मालिक के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा होगा। आप समझाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए। जो कुछ करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब हमें यहाँ से निकालना चाहता है वह गुरुमुखों के जरिए हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देता है, नाम के साथ जोड़ देता है। इसलिए गुरु अर्जन देव जी हमें समझाते हैं कि गुरुमुख हम पर उस वक़्त ही बख्शिश करते हैं जब उस परमात्मा का हुक्म होता है, उस परमात्मा की हम पर दया मेहर बख्शिश होती है।
मेरे मन गुर जे वड अवर न कोई, मेरे मन गुर जे वड अवर न कोई।
अब गुरु साहब हमारे मन को समझाते हैं कि हे मन, गुरुमुखों से बड़ा और कोई भी नहीं है। गुरुमुखों से ज्यादा उपकार हम पर और किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो जन्मों जन्मों से 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं और वह हम पर दया मेहर बख्शिश करके हमें मक्खन से बाल की तरह निकालकर परमात्मा के साथ मिला देते हैं। बड़ा वही है जो बड़े से बड़े के साथ मिला दे, यानी परमात्मा के साथ हमारा मिलाप करा दे। आप मन को समझाते हैं कि हमें सतगुरु भक्ति में रहना चाहिए, इस ऐशो इशरत में से ख्याल को निकालना चाहिए, शराबों कबाबों को छोड़ना चाहिए। बहुतेरी उम्र इनकी लस्तें लेकर देख ली हैं, अगर आज तक इनमें से सुख और शांति नहीं मिली तब आगे जाकर हमें किस तरह इनमें से सुख और शांति मिल सकती है। जो कुछ भी मिलेगा वह सूरत शब्द की कमाई से मिलेगा, जिसकी ओर हमारा ख्याल गुरुमुखों की संगत या सोबत के जरिए ही जाता है।
दूजा थाओ ना को सुझे गुर मेले सच सोई।
गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुमुखों के स्वाय और कोई ठिकाना ही हमें नजर नहीं आता, क्योंकि जब भी सच यानी शब्द या नाम के साथ हमारा ख्याल जुड़ेगा केवल गुरुमुखों के जरिए, साधु संतों महात्माओं के जरिए जुड़ेगा। जितनी मर्जी ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़कर देख लें, जितनी मर्जी मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में चक्कर लगाकर जंगलों पहाड़ों में छिपकर देख लें, जब भी अंदर उस नाम रूपी अमृत को पी सकेंगे गुरुमुखों के जरिए ही पी सकेंगे। जब भी अंदर शब्द या नाम की लज्जत आएगी गुरुमुखों के जरिए ही आएगी, साधुओं संतों महात्माओं के जरिए ही आएगी। समुद्री जहाज के कौवे को उस जहाज के स्वाय बैठने का और कोई ठिकाना नहीं होता, वह चाहे कितनी उड़ान भरकर देख ले। उसी प्रकार हम दुनियादारों को गुरुमुखों के स्वाय कोई ठिकाना नहीं है। जितने मर्जी मन में भ्रम और संकल्प पैदा करके देख लें, जो कुछ भी मिलेगा उन्हीं की संगत से, उन्हीं के उपदेश पर चलने से मिलेगा।
सगल पदारथ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए।
गुरु साहब कारण बयान करते हैं कि सतगुरु के स्वाय हमें और कोई ठिकाना क्यों नजर नहीं आता। सगल पदार्थ तिस मिले, जो कुछ भी हम चाहते हैं वह यानी परमात्मा उस वक्त मिलेगा जिन गुर डिठा जाए, जब अपने अंदर सतगुरु के दर्शन कर लेंगे। जो गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार नौ द्वारों से ख्याल निकाल कर आँखों के पीछे इकट्ठा करके सूरज चंद्रमा तारा मंडल लांघ कर गुरुमुखों के नूरी स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं, वही भाग्यशाली जीव उस परमात्मा से मिलाप के योग्य बनते हैं, वही वापस जाकर उस परमात्मा से मिल सकते हैं। जब रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, रास्ता नजर आने लगता है, तब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर भी पहुंच जाते हैं। गुरु अमरदास जी ने लिखा है, नानक जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। जिनको सतगुरु मिल जाता है तिनका लेखा निबड़िया, उनका लेखा खत्म हो जाता है। लेकिन सतगुरु का मिलते हैं जब हम अंदर उनका नूरी स्वरूप देखना शुरू कर देते हैं। यही सारे संत महात्मा हमें समझाते हैं, यही गुरु नानक साहब का इशारा है कि जो अंदर सतगुरु के दर्शन कर लेते हैं उनको सकल पदार्थ मिल जाते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गुरुमुखों का असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है, इसलिए हमें अंदर ही उनके नूरी स्वरूप शब्द स्वरूप को देखना है और उसको पकड़कर ही अपना रूहानी सफर तय करना है। आप बाबा जी महाराज के पत्रों में भी आम पढ़ते हैं, आप लिखते हैं कि जब संत सतगुरु नाम देते हैं वह जीव के अंदर बैठ जाते हैं, उस जीव को धुरधाम पहुंचाने के जिम्मेवार बन जाते हैं। इसलिए हमें उन गुरुमुखों के नूरी स्वरूप के अंदर से दर्शन करने हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सतगुरु के सिवाय हमें और कोई ठिकाना ही नज़र नहीं आता, क्योंकि ना हमें रास्ता नज़र आता है, ना हमें रास्ते पर कोई चलाने वाला नज़र आता है। जब उनकी दया मेहर से रास्ता नज़र आ जाएगा, वे उंगली पकड़कर हमें चलाना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा रूहानी सफ़र भी पूरा हो जाएगा।
गोर चरनी जिन मन लगा से वड पागी माए।
गुरु साहब उन अभ्यासियों की महिमा करते हैं जो सब दुनिया से मोह या प्यार निकालते हैं, अंदर गुरुमुखों के नूरी स्वरूप के साथ प्यार करने लगते हैं, उठते बैठते चलते फिरते उनके चरणों के प्यार में डूबे रहते हैं। आप फरमाते हैं कि वह कोई मामूली जीव नहीं है, वो बहुत भाग्यशाली हैं, उनके बड़े श्रेष्ठ कर्म हैं, वह बड़े खुशकिस्मत हैं जो 24 घंटे सतगुरु को अपने साथ साथ लिए फिरते हैं, क्योंकि वह ही वापस जाकर परमात्मा से मिलने के हकदार बनते हैं। जो गुरुमुखों की संगत उनकी सोबत नहीं करते, उनके बारे में गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर न सेवे मूर्ख अंध गवारा, फिर ओए किथों पायन मुख द्वारा। जो गुरुमुखों की संगत नहीं करते, उनके उपदेश पर नहीं चलते, वह मुक्ति किस तरह हासिल कर सकते हैं, मुक्ति के दरवाजे पर किस तरह पहुंच सकते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, जिन्ना सतगुर पुरख न पेटियो से पागहीन वसकाल। जो गुरुमुखों की संगत या सोबत नहीं करते, वह बहुत खोटे बागे वाले हैं, उन्हें मौत के बाद जाकर काल के वश में होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आप सतगुरु भक्ति की महिमा करते हैं कि सतगुरु के सिवाय और कोई ठिकाना ही नहीं है और हमें कुछ नज़र ही नहीं आता, क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा उनकी दया मेहर बख्शिश से मिलेगा।
गोर दाता समरथ गोर गुर सब में रया समाए।
गुरु साहब फरमाते हैं कि किस लिए सतगुरु से प्यार करना है, किस लिए उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करने हैं। गुरु दाता, वह दाता हैं, वह बख्शिश करने के लिए आते हैं। एक तो उनका भंडार भरा हुआ है और दूसरे वह दाता है। अगर किसी का भंडार भरा हुआ है लेकिन वह दाता नहीं है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं। अगर कोई दाता बना बैठा है लेकिन उसका भंडार ही खाली है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। सतगुरु का भंडार भी भरा होता है, वह दाता भी होते हैं। दाता उसी को कहते हैं जो कुछ देता है, उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता। मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि ना वह कौम बदलने को कहते हैं, ना वह मज़हब बदलने को कहते हैं, ना वह हमसे कोई धन दौलत लेते हैं, वह तो केवल बख्शिश के लिए आते हैं। आप फरमाते हैं कि सतगुरु समर्थ होते हैं, वह हर एक के अंदर समाए होते हैं। आप पूछेंगे कि आदमी किस तरह आदमी के अंदर समा सकता है। सतगुरु का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, वह नाम होता है। इंसान का उस्ताद केवल इंसान ही हो सकता है। गाय भैंसों की किसी को बोली समझ में नहीं आती, देवी देवता किसी ने देखे नहीं। जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें ना समझाए, हमें कभी किसी चीज़ की समझ नहीं आती। गुरमुख शब्द में से आते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जो मालिक के भगत और प्यारे हैं, वह तो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न या भेद नहीं होता। उनका परमात्मा के साथ क्या रिश्ता होता है? ज्यों जल तरंग उठे बहु पाती, फिर सलले सलल समाएंदा। लहर 2-4 मिनट के लिए पानी में उठकर पानी में ही समा जाती है। जो लहर का समुन्द्र के साथ रिश्ता होता है, वही गुरमुखों का मालिक के साथ या सतनाम के समुन्द्र के साथ रिश्ता होता है। मालिक के भगत और प्यारे सतनाम के समुन्द्र की लहरें बनकर आते हैं। वह दुनिया में आकर शब्द या नाम का प्रचार करते हैं, शब्द या नाम का हुक्का देते हैं और वापस जाकर, बल्कि हमें साथ लेकर सतनाम के समुन्द्र में ही समा जाते हैं। इसलिए गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, सब में रहा समाए, कि जो हमारा सतगुरु है वह कोई शरीर नहीं है, वह हम सब के अंदर समाया हुआ है, वह हर एक जीव के अंदर बैठा हुआ है। उसका जो असली स्वरूप है वह शब्द है, नाम है।
गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लेतराए।
अब गुरु साहब समझाते हैं कि किस तरह सतगुरु हम सब के अंदर समाया होता है। गुर परमेश्वर, जो गुरमुख होते हैं वह परमेश्वर का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न या भेद नहीं होता। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, गुर परमेश्वर एको जान। बुल्ले शाह ने भी अपने कलाम में लिखा है, मौला आदमी बनाया। हजरत ईसा ने कहा है, मैं और पिता एक हैं। संतों महात्माओं और परमात्मा में कोई भिन्न या भेद नहीं होता। इस रूप में आने के बावजूद वह हम सब के अंदर समाये होते हैं। आप फरमाते हैं, गुर डुबदा लेतराए। दुनिया के हम सब जीव इस भाव सागर में डूब रहे हैं। हम अपने कर्मों के कारण यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन वह गुरमुख हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें हमेशा के लिए इस भाव सागर से पार कर देते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सतगुरु है बोहे था सबद नघामनहार। सतगुरु मलाह बनकर आते हैं। उनके पास किस चीज़ का जहाज होता है? शब्द का जहाज होता है, नाम का जहाज होता है। गुरु नानक देव जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाते हैं, पत्तन कुके पातणी वंजो त्रुक विलाड़, पार पवंदड़े डिठ में सतगुरु बोहित चाड़। मला एक किश्ती को लेकर दरिया के किनारे पर खड़ा होकर आवाज़ देता है कि जिसे दरिया की लहरों से बचकर परले किनारे पर जाना है, वह आकर मेरी किश्ती में सवार हो जाए। जो शख्स दौड़कर उस किश्ती में सवार हो जाते हैं, वह दरिया की लहरों से बचकर दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। जो उस मलाह पर भरोसा ना करते हुए किश्ती में ही नहीं बैठते, वह दरिया के इस तरफ इसी किनारे पर रह जाते हैं। इसी तरह संत महात्मा दुनिया में शब्द का बेड़ा, नाम का जहाज़ लेकर आते हैं। वह शब्द या नाम का प्रचार करते हैं। अगर हम दुनिया के जीव उनके समझाने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, हम इस भावसागर की लहरों से बचकर हमेशा के लिए उस समुन्द्र के किनारे पर लग जाते हैं। नहीं तो हमारा लेन देन का हिसाब यहाँ चलता ही रहता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि वह सतगुरु परमेश्वर रूप हैं। जब हम उनकी संगत करते हैं, उनके समझाने के अनुसार नाम की कमाई करते हैं, वह हम डूबते हुओं को हमेशा के लिए इस भवसागर से पार कर देते हैं।
कित मुख गुर सलाहिए, करन कारण सम्रथ।
सतगुरु की इतनी महिमा करके भी गुरु साहब लिखते हैं, कित मुख गुरु सलाही है, कि किस मुंह से हम सतगुरु की महिमा कर सकते हैं। उनको परमात्मा भी कह दिया, समर्थ भी कह दिया, दाता भी कह दिया, सबके अंदर समाया हुआ भी कह दिया, फिर भी समझाते हैं कि कूंज की सार वही जानते हैं जो कूंज के साथ उड़ते हैं। सतगुरु करण कारण हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। जो कुछ हैं गुरुमुख ही गुरुमुख हैं, उनके स्वाय हमें और कुछ नजर ही नहीं आता।
से मथे ने चल रहे जिन गुर तारे आ हाथ।
आप फरमाते हैं कि वे लोग बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें सतगुरु अपनी शरण में ले लेते हैं, जिन्हें सतगुरु शब्द या नाम के रास्ते पर चलाना शुरू कर देते हैं। जो अपना सिर उनके आगे झुकाते हैं वह कोई मामूली लोग नहीं होते, वह भी बहुत खुशकिस्मत होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं। जब गुरुमुख चाहते हैं तभी हम उनकी शरण हासिल कर सकते हैं। पीछे आप समझा के आए हैं कि जब परमात्मा का हुक्म होता है तभी हमें गुरुमुखों की संगत या सोबत प्राप्त होती है, तभी हमारे मन में उन पर भरोसा और विश्वास आता है और तभी हम उनके उपदेश पर चलने के काबिल बनते हैं।
गुर अमृत नाम पियाले जन्म मरण का पथ।
आप बताते हैं कि जिनको गुरुमुख अपनी शरण में ले लेते हैं उन पर वे क्या बख्शिश करते हैं, उन पर वे क्या दया मेहर करते हैं। गुर अमृत नाम पिया लिया कि वह उनको नाम रूपी अमृत पिला देते हैं। वह उनका ख्याल उस शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं जिसे पकड़कर वह अमर हो जाते हैं, जिसको पाकर उनका जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है, उन्हें बार बार देह में नहीं आना पड़ता। वह कौन सा अमृत पिलाते हैं? ये कोई रस्मी अमृत की तरफ इशारा नहीं है, ये वह अमृत है जो हम सबके अंदर बरस रहा है। वह अमृत चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु रामदास जी बड़ा खोल कर लिखते हैं, नौ दरवाजे नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजे, कि उस अमृत का पता आँखों के नीचे नीचे नहीं चलता। आँखों के नीचे नीचे तो सिर्फ इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों कबाबों की लस्तें हैं। जो रस का भरा हुआ अमृत है वह दसवें चुईजे, वह हमारी आँखों के पीछे बरस रहा है। जब तक हम उस नुक्ते पर ख्याल इकट्ठा नहीं करते हम कभी उस अमृत को पीने के काबिल नहीं बन सकते। हम तो बाहर की रस्मी चीज़ों को अमृत समझे बैठे हैं, लेकिन जिस अमृत को पीकर हमें अमर होना है वह अमृत बाहर नहीं है, वह अमृत हम सब के अंदर दिन रात बरस रहा है। आप देखें कि कितनी भी ज़बरदस्त बारिश क्यों ना हो रही हो, अगर बर्तन को ही उल्टा करके रख दें तो उसके अंदर बारिश का एक कतरा नहीं जा सकता। अगर बर्तन को सीधा कर देंगे पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी बारिश में भर जाएगा। अमृत आँखों के पीछे बरसता है। जिसे अमृत को पीना है वह कभी बेटे बेटियों के प्यार में उलझा बैठा है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े खड़े किए बैठा है, कभी काम क्रोध की लहरों में बह रहा है। जब तक हम गुरुमुखों के समझाने के अनुसार ख्याल को इधर से निकालकर आंखों के पीछे नहीं लाते तब तक हम अपने अंदर उस अमृत को किस तरह पी सकते हैं? सिर्फ उस अमृत को पीकर ही हम अमर हो सकते हैं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजे। वह नाम अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी किस लिए कहते हैं? हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसे मीठी चीज़ नहीं मिलती इसका फीकी चीज़ से ख्याल कभी नहीं निकलता। जब तक इसे दुनिया की ऐशो इशरत की शराबों कबाबों की लज्जतों से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, ये दुनिया के सैर रंग तमाशों से कहाँ ख्याल निकालता है। वह नाम रूपी अमृत इतना ऊंचा और पवित्र है कि उसको पाकर हम अमर हो जाते हैं। जन्म मरण का पथ, कि हम मरण जन्म के जिस चक्कर में फंसे हुए हैं इससे हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है।
गुर परमेश्वर ਸੇਵਿਆਂ ਪੈ ਪੰਜਨ ਦੁੱਖ ਲੱਥ।
ਅਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕਰ ਉਸਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਜਾਣਤੇ ਹੋਏ ਉਨਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰ ਚਲੇ, ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਕਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਹਮੇ ਕਿਆ ਡਰ ਲਗਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਮੌਤ ਕਾ ਡਰ ਲਗਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿਸ ਵਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਦੂਤੋਂ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਘਸੀਟਣਾ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਜਾ ਕਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਕਿਨਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਇਹ ਡਰ ਹਮੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕਰ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਸਮਝਾਨੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਕਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਉਨਕੋ ਉਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਜਿਤਨੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨ ਸਭ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਹਮੇ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਕਾ ਡਰ ਲਗਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਪਾਪੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹਮ 84 ਕੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਮੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਸੇ ਉਨਕਾ ਇਨ ਸਭ ਪਾਪੋਂ ਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਜਾਲ ਸੇ ਬਚ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਕੇ ਮਨ ਮੇਂ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਉਨਕੇ ਮਨ ਮੇਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ।
ਸਤ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਅਗ ਖੰਡ।
ਆਪ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਯੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਵਹਿ ਸੁਖੋਂ ਕਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਵਹਿ ਪਾਪੋਂ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ।
ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡੰਡ।
ਸਭ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਹਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਭੇਦ ਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਹਮੇਂ ਨਾਮ ਕਾ ਭੇਦ ਦਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹੈ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਰੂਪ ਥੇ। ਜੋ ਜੋ ਜੀਵ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਉਨਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮੇਂ ਗਏ, ਉਨਕੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵਹਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਭੇਦ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਾ ਭੇਦ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਹਿ ਮਹਾਤਮਾ ਆਜ ਹਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਭੇਦ ਦੇ ਕਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਕੋ ਕਭੀ ਡੋਲਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਵ੍ਰਤਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤੀ ਕੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਕਾ ਪਤੀ ਸਾਥ ਛੋੜ ਵੀ ਜਾਏ, ਵਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਂ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਮੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਕਭੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਕੋ ਕਿਸੀ ਤਰਫ ਡੋਲਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਬ ਹਮ ਇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡੰਡ, ਫਿਰ ਯਮਦੂਤੋਂ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੜਤੇ, ਯਮਦੂਤ ਹਮਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤੇ। ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਮੌਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਰ ਉਸੀ ਕਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮੌਤ ਕੇ ਸਮੇਂ ਆਏਂਗੇ ਔਰ ਹਮੇਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਂ ਸਮਾ ਜਾਏਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹਮਾਰੀ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਲੱਗਈ ਖੋਜ ਡਿੱਠਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ।
ਅਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। अपने सतगुरु को क्यों इतना ऊंचा और पवित्र समझना है। आप समझाते हैं, गुर नाल तुल न लग गई खोज डिठा ब्रह्मांड, कि ये दुनिया ही नहीं खंड ब्रह्मांड भी हमने खोज मारे, हमें अपने सतगुरु जैसा कोई नज़र ही नहीं आता, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलना है वह अपने सतगुरु से ही मिलना है, इसलिए हमें अपने सतगुरु से प्यार करना है।
नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन में मंड।
अब गुरु साहब समझाते हैं कि अपने सतगुरु जैसा इस दुनिया में या खंडों ब्रह्मांडों में और कोई क्यों नहीं है। आप फरमाते हैं कि अपने सतगुरु ने हमें वह नाम रूपी दौलत दी है जिसे पाकर हम बादशाह बन गए हैं, मरण जन्म के दुखों से हमने छुटकारा हासिल कर लिया है। जिस दौलत को हासिल करके हमारे मन में तृप्त आ गई है, हमारे मन में ठंडक पड़ गई है, शांति आ गई है, फिर हमारे सतगुरु जैसा और कौन हो सकता है। इसलिए आपने छोटे से शब्द में गुरमत को, सतगुरु भक्ति को खोलकर बयान किया है। हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करें।
नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन में मंड।